मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं नक्सलियों की जो फिलॉसफी है उस पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले आइए एक दो जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण घटना है उन्हें देख लेते हैं। जो सबसे बड़ी घटना है, एक तरह से राष्ट्रीय स्तर की ही घटना हो गई है और हर अखबार में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिला होगा, न्यूज़ चैनल्स पर भी आपने इसके बारे में खूब सुना होगा, और वह घटना है दोस्तों कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है। अब आप देखिए कि यह एक घटना है, गृह मंत्री का त्याग पत्र देना। अब ठीक है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने त्याग पत्र दिया है तो सिविल सर्विस से इसका क्या लेना देना, एक राज्य के गृह मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है तो क्यों है, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, सामान्य तौर पर अगर ये त्याग पत्र दिए जाते, क्योंकि देखिए कैबिनेट में फिर बदल होती रहते हैं, स्वास्थ्य खराब हो गया तब आप त्याग पत्र दे देंगे, किसी और रीजन से त्याग पत्र दे देंगे, तब तो बात ठीक थी, तब हमारे लिए यह घटना महत्वपूर्ण नहीं थी, हमारे लिए यानी कि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन यहां जो त्याग पत्र दिया गया है उसका जो कारण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप विचार करेंगे, इस टॉपिक को तैयार करेंगे, तो घटना किनारे हो जाएगी, क्यों त्याग पत्र दिया ये किनारे हो जाएगी ये बात। तो क्या बात महत्वपूर्ण हो जाएगी कि इस त्याग पत्र के पीछे कौन सा विचार काम कर रहा है, इस त्याग पत्र के पीछे कौन सी व्यवस्था काम कर रही है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कौन सी व्यवस्था काम कर रही है, देखिए तो व्यवस्था बहुत सिंपल सी है। व्यवस्था यह है कि गृह मंत्री जी पर यह आरोप लगाया गया और पुलिस कमिश्नर के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उन्हें 100 करोड़ रुपए प्रति महीने उगाहने को कहा गया था, कि यानी कि बॉम्बे जो शहर है उससे आप 100 करोड़ रुपए प्रति माह वसूल करके मुझे दीजिए। यह आरोप है, अभी इसकी जांच होगी। तो जब हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए तो फिर गृह मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा, राइट। तो अब आप देखिए कि अब घटना कहां गई, 100 करोड़ रुपए उगाहने की बात की पुलिस से कहा जा रहा है, ठीक। अब जब पुलिस इस आदेश का पालन करेगी या इस आदेश का पालन नहीं करेगी तो क्या होगा, अगर पुलिस इस आदेश का पालन नहीं करती है तो उस कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को जिसे ये बात कही गई है उसका स्थानांतरण कर दिया जाएगा और वो दूसरे को ले आएंगे, अपने पसंद के पुलिस कमिश्नर को ले आएंगे, इसी शर्त पर कि बताओ भैया तुम 100 करोड़ रुपए दे सकोगे या नहीं दे सकोगे। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो राजनीति के चंगुल में है, और इस पर बकायदे कई बार सुप्रीम कोर्ट ये कह भी चुका है कि जो बहुत वरिष्ठ अधिकारी होते हैं या कुछ ऐसे पद होते हैं कि जिन पर एक बार नियुक्ति के बाद कुछ समय तक उन्हें वहां से नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन इस सुधार को कोई भी राज्य लागू नहीं कराया, कुछ ने कर दिया हो तो नहीं कह सकते, तो हटा दिया जाएगा, दूसरा आ जाएगा। अब ये जब पुलिस वसूल करेगी तो जिन लोगों से भी ये गैर वाजिब वसूल कर रही है, अब ये क्या करेंगे, ये लोग इसका फायदा उठाएंगे क्योंकि वो तो गलत धन दे रहे हैं तो गलत रास्ते अख्तियार करेंगे, जब ये गलत रास्ते अख्तियार करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर से भी आप इसे जोड़ सकते हैं, प्रशासनिक सुधार से भी आप जोड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, इससे कुछ दिनों पहले मैंने आपसे चर्चा की थी चुनाव सुधार के बारे में, और चुनाव सुधार में सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि चुनाव में जो धन खर्च हो रहा है इस पर नियंत्रण लगाया जाए। आपको ध्यान होगा चुनावी बॉन्ड की चर्चा करते समय मैंने बताया था। अब सवाल यह कि गृह मंत्री क्यों कह रहे हैं मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, क्या उनको अपने लिए ही चाहिए या पार्टी के लिए चाहिए या चुनाव में खर्च करने के लिए चाहिए, किस लिए चाहिए, क्योंकि ये फिर से एक विचारणीय प्रश्न है। तो ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है, देखिए जब चुनाव होते हैं तो जो राजनीतिक दल हैं वो लोगों से चंदा लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, दुनिया के दूसरे देशों में भी होता है, लेकिन सवाल यह है कि वो किस रूप में लिया जा रहा है और किस तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमेशा यह बात कही जाती है कि भाई चुनाव को आप बहुत सरल सीधा सहज बना दीजिए कि वहां पैसे का महत्व खत्म हो जाए, तो फिर यह उगाही जैसी बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसे कहा जाता है चुनावी सुधार, एक प्रकार से भारत में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है उसको खत्म करने का सबसे बड़ा मंत्र है, लेकिन वो चुनाव सुधार भी नहीं हो रहे हैं। अब करेगा कौन, पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के ही तो रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा में बैठे हुए हैं और संसद में बैठे हुए हैं, ये नहीं करना चाहते। तो ये बड़ा विचित्र किस्म का एक विशेष सर्किल सा बन गया है, इसे आपको समझना होगा। और इसे कहीं ना कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, क्रोनी कैपिटलिज्म, याराना पूंजीवाद। कौन कौन से यार हैं इसमें? राजनेता हैं, अफसर हैं या नौकरशाही आप कह लीजिए वो हैं, और तीसरे पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, क्योंकि वसूल तो उन्हीं से करना है, उद्योगपतियों से ही वसूल करना है। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये तीनों का एक गठजोड़ सा बना हुआ है और देश बुरी तरह से इसके जाल के बीच में उलझा हुआ है। तो दोस्तों ये गृह मंत्री के त्यागपत्र को लेकर के जो कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, उधर मैंने आपका ध्यान दिलाया है, ताकि यदि मेंस में इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ भी लिया गया तो आप इस नए उदाहरण को कोट कर सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों रेडियो न्यूज में आपने सुना होगा कि हमारे यहां जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस हैं, जिसे हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं, आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है, उनका दिवाला निकलने को है, वो कर्ज की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो बैंकों का ऋण हो या व्यक्तिगत तौर पर किसी कंपनी से लिया गया ऋण हो, तो उनका दिवाला निकल जाता है। तो सरकार ने एक अभी अध्यादेश जारी किया है और उस अध्यादेश के माध्यम से इन्हें थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की गई है, बस कुल मिलाकर के कि इन्हें राहत देने की कोशिश की गई है, कि ताकि जो हमारे यहाँ जो रोजगार की स्थिति है वो बहुत ज्यादा इससे दुष्प्रभावित न हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इन उद्योगों में सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को उपलब्ध होता है, साथ ही साथ हमारा व्यापार जो है वो इससे बाधित न हो पाए, और इससे जो जितने भी हितधारक जुड़े हुए हैं उन हितधारकों का बहुत ज्यादा नुकसान न हो पाए, इसके लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है। इसकी कुल मिलाकर के व्यवस्था ये की गई है कि दिवालिया होने से पहले कोशिश की जाएगी कि जितना भी लेन देन का मामला है उस पर विचार किया जाए, विचार करके मामले को आपस में सुलझा लिया जाए, तो हितधारकों के हित भी रक्षा हो सकेगी और एक योजना, एक प्लान तैयार किया जा सकेगा कि ठीक है अगर दिवालिया होना ही है तो इस तरीके से किया जाना बेहतर होगा। कुल मिलाकर के अध्यादेश का मूल चरित्र यही है, लेकिन चूंकि ये हमारे क्षेत्र देश का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग उससे जुड़ा हुआ है, तो अपडेट करने के लिए इसकी जानकारी आपके लिए जरूरी थी। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और जो मुख्य विषय है वो है नक्सलियों का दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी ऑफ नक्सलाइट्स। ये जो नक्सलाइट हैं ये एक बहुत विचित्र किस्म की फिलॉसफी को लेकर के चलते हैं, और ये जो फिलॉसफी है ये मार्क्सवाद से जुड़ी हुई फिलॉसफी, अब ये बात अलग है कि ये मार्क्सवाद का अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन करते हैं। देखिए कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी आपको मालूम हो गया ऐसा मैं मान करके चलता हूं, और नहीं मालूम है तो मालूम होनी भी चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में सीधे सीधे दिया हुआ है, मार्क्सवाद आपको पढ़ना ही होगा, राइट। 1850 के आसपास इनकी फिलॉसफी आई थी, और आप देखिए कि 1850 के बाद लगभग 1915 तक कार्ल मार्क्स को कोई लोग बहुत ज्यादा जानते नहीं थे, बस थोड़ी बहुत चर्चा भर हो जाती थी। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, सिंपल सी बात उन्होंने कही थी कि समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग शोषक होता है दूसरा वर्ग शोषित होता है। ये जो शोषक वर्ग है शोषण करता है, जिसमें उन्होंने पूंजीपतियों को कहा, नौकरशाहों को कहा, उच्च वर्ग के लोगों को कहा, ये शोषण करते हैं, तो इनको कहा ये शोषक वर्ग, शोषण करने वाला वर्ग। दूसरा वर्ग शोषित वर्ग है जिसका शोषण किया जाता है। देखिए जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी आई है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय की थ्योरी है, उस समय पूंजीपति उभर रहे थे, फैक्ट्रियों में मजदूर बहुत काम करते थे, मजदूरों की स्थिति बड़ी खराब थी, उनको बहुत कम सैलरी मिलती थी, उनकी जो मजदूरी थी बहुत कम थी, किसी तरह से ले दे करके वो अपना जीवन यापन कर पाते थे। तो उन्होंने शोषक शोषित वर्ग की बात कही, और इन्होंने ये कहा कि आज की बात नहीं है, ये शुरू से चला आ रहा है, ठीक है चलिए अब क्या किया जाए। तो कार्ल मार्क्स ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो सत्ता है, यदि सत्ता पर ये जो शोषक वर्ग है इसका अधिकार हो जाए, यानी कि अगर श्रमिकों का अधिकार हो जाए तो सीधी सी बात है कि फिर इनका कौन शोषण करेगा, क्योंकि ये तो खुद ही सत्ता पर अधिकार कर बैठे हैं, अपने ढंग से कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे और इनका शोषण खत्म हो जाएगा, ये कार्ल मार्क्स मानकर चले। तो चलिए इनके सिद्धांतों को लेकर के ही फिर लेनिन ने, जिनका नाम आपने सुना होगा, रशिया में रिवोल्यूशन किया और बाकायदे श्रमिकों को लेकर के ही रिवोल्यूशन किया। और उस रिवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप वहां के जो जार थे, जिन्हें कह लीजिए कि राजा महाराजा सम्राट जो भी आप नाम देना चाहें, उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी और एक प्रकार से सत्ता पर श्रमिकों का अधिकार हो गया। श्रमिकों का तो क्या अधिकार होगा, जो श्रम नेता थे उनका अधिकार हो गया। चलिए इसके बाद रशिया आगे चलता रहा। तो लगभग फिर कुछ सालों के बाद 1950 के आसपास आकर के फिर चीन में 45 के आसपास से शुरू हो गई थी, आप कह लीजिए कि एक और लीडर हुए माओ त्से तुंग, नाम आपने सुना होगा माओ त्से तुंग। इसीलिए अखबारों में आप इन नक्सलियों के लिए माओवादी शब्द भी सुनेंगे पढ़ेंगे, माओवादी माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग ने यह थ्योरी दी, बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो सत्ता है ना, ये सत्ता कोई आंदोलन और इन सब से नहीं निकलती है, सत्ता तो बंदूक की गोली से निकलती है। जब तक बंदूक की गोली नहीं चलेगी तब तक सत्ता पर अधिकार नहीं किया जा सकता। और फिर माओ त्से तुंग ने किसानों को संगठित करके, श्रमिकों को नहीं, किसानों को संगठित करके वहां एक प्रकार से आप कह लीजिए मार्क्सवादी क्रांति कर डाली। फिर उन्होंने अपने विचार दिए जिसे माओवादी विचार कहते हैं। तो एक तरफ लेनिन हो गए, एक तरफ माओ हो गए। चलिए ये दो सबसे मुख्य नाम हैं। माओवाद के बाद लगभग ये एस्टेब्लिश होने लगा कि जो सत्ता पर अधिकार है, ये जो शोषित वर्ग है, सत्ता पर अधिकार हिंसा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है, हिंसा के माध्यम से। अब ये देखिए कि अगर हम इसको अब नक्सलियों पर अपने अप्लाई करें तो ये नक्सली क्या कहते हैं कि ये जो जंगल में रहने वाले जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, इनका शोषण किया जा रहा है, पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, इनको इनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, वन पर से इनका अधिकार समाप्त कर दिया गया है, इनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है, हर कोई इनका शोषण करता है, ये मान लिया। और उन्होंने फिर वर्ग शत्रु आइडेंटिफाई किया, इनका शोषण करने वाले कौन लोग हैं, जमींदार, अब तो खैर जमींदार रह नहीं गए, पूंजीपति, नौकरशाह, ये सब इनका शोषण करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो नक्सली जो हिंसा का जो शिकार बनाते हैं वो इसी तरह के लोगों को बनाते हैं, पूंजीपतियों को बनाएंगे, उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको बनाएंगे, सरकारी जो नौकरी में है उनको बनाएंगे, इन सबको वो अपना शत्रु मानते हैं कि यही हमारा शोषण करते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये इनकी फिलॉसफी है। तो अब हम जो है हिंसा के माध्यम से अपने शोषण को रोकेंगे और सत्ता पर ही हम अधिकार करेंगे। अब आप देखिए कि नो डाउट कि हमारे हमारे पक्ष पर भी हमारा जो विकास हुआ है, एक कमी ये रही है कि हमने इन क्षेत्रों के विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो ये जो कुछ लोग हैं जो अपने को नक्सलवादियों का हितैषी कहते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, वहां के लोगों को भ्रम में डालते हैं, अरे हम तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं, हम तुम्हारा अधिकार दिलाएंगे, तो उनको बकायदे हथियार देने लगेंगे, उनको ट्रेन करने लगेंगे और उनको अपना सपोर्टर बना लेते हैं, समर्थक बना लेते हैं। और फिर जब एक तरफ ये नक्सलवादी तैयार हो जाते हैं और दूसरे तरफ फिर सरकारी तंत्र, जिसमें आप कह लीजिए पुलिस वाले हैं या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ये हैं, इन दोनों के बीच में मुठभेड़ होती है और जिसका एक बहुत ही दर्दनाक रूप हमें परसों देखने को मिला। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये हिंसा के माध्यम से सत्ता पर शोषितों का अधिकार कायम करना, ये इनकी मूलभूत फिलॉसफी है जो इन्होंने मार्क्स के सिद्धांत से लेकर के और माओ तक पहुंचा दिया है। मैं यहां अपने जो ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस पर एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया है, वामपंथी उग्रवाद टाइटल से, लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिज्म, और उसमें नक्सलवाद के बारे में बहुत विस्तार के साथ बातें की गई हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं जब ये बात कहता हूं तो आपको एक बात बहुत ध्यान में रखनी होगी कि आपको अपने सिस्टम को तोड़ करके उस लेक्चर को नहीं सुनना है, मैं केवल आपके दिमाग में ये जानकारी डाल रहा हूं कि इसके बारे में विस्तार से आपको समझाया गया है, बस इतना ही। जब उसका मौका आएगा राष्ट्रीय सुरक्षा वाले विषय की जब आप तैयारी करेंगे तब आप इस लेक्चर को सुनेंगे। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से एक दोस्त के नाम है बसंत भंडारी, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।